आज का जो सबक है हमारा आयत नंबर 104 से लेकर 112 तक है। मैं चाहूंगी आज पूरे सबक का आपको पहले समअप लिखा दूं, फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा एक एक चीज पे आपका दिमाग खुलता जाएगा। तीन मुख्तलिफ शोशे, शोशे को लिख ली थी आज की जुबान में प्रोपेगंडे, जो यहूद ने नबी सल्लम से रोकने के लिए किए। जुमला छोटा कर देती हूँ, आसान हो जाए। आज के सबक में यहूद के तीन प्रोपेगंडों का जिक्र है जो उन्होंने नबी सल्लम की महफिलों से लोगों को दूर रखने के लिए इख्तियार किए। अल्लाह ताला ने तीनों का तस्करा करके आखिर में बता दिया कि जन्नत में कौन जाएगा। ये है आज के पूरे सबक का खुलासा। अब हम करेंगे आयत नंबर 104 से 105। ये है पहला, अगर आप लिखेंगे तीन प्रोपेगंडों में पहला, आयत 104 से 105 तक। फिर दूसरा आयत नंबर 106 से लेकर 107, दो दो आयतें हैं दोनों में। और उसके बाद 108 नंबर जो आयत है, ये है तीन प्रोपेगंडे। आयत नंबर 109 में अल्लाह ताला ने इनसे डील करने का तरीका, और आयत नंबर 109 से 112 तक में आपको मुझे बहुत खूबसूरत मेथडोलॉजी सिखाई। आइए अब हम पहले प्रोपेगंडे पे बात करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अल्लाह ताला इंसानियत को पुकारते हैं ईमान की निस्बत से। नोट कीजिए, किसी को उसके नाम से पुकारते हैं ना मैं और आप तो मोमन। जैसे मैं कहूँगी फातिमा बात सुनिए, आयशा बात सुनिए, हाजरा बात सुनिए। सुनने वालों का अपना नाम सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं किसी को पुकारूं ओ बहादुर बच्ची इधर आओ, किसी से मैं कहूँ फैयाज औरत इधर आइए, ओ सखी औरत इधर आइए, या मैं कहूँ ओ मेहनती और बच्ची बात सुनो, तो कौन सा अच्छा लगेगा? बच्चों को क्या अच्छा लगता है? आप अपने बच्चों पर इसको लेके सोचें। हमेशा जब आप किसी की सिफत के साथ पुकारते हैं तो उसको खुशी होती है। अल्लाह सुभान व तआला ने हम नकारों को इज्जत दी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर। जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए ना, तो सहाबा कराम की सुन्नत को सामने रख लिया करें। कहा करते थे जी अल्लाह। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु का गालिबन या इब्ने उमर, दोनों में से किसी एक का कौल है, कहते हैं जब भी आए या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू हो तो कहते हैं ए ईमान वालों, अब गौर से सुनो क्योंकि तुम्हारे रब ने तुम्हें पुकारा है। जैसे कोई आपको कहे ना आपकी कॉल आई है, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, तो ये तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, बड़ी ऊपर से आती है ना, तो मेरी आपकी तवज्जो ज़्यादा हो। अगर इस वक्त तक भी अगर तवज्जो में कुछ कमी थी तो अब ये लफ्ज़ हमसे तकाजा करता है कि हम और सोचें। क्या कहा गया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तकूलू, मत तुम कहो, लिख लें डोंट्स, नहीं है ये। कुरान पाक में डूज एंड डोंट्स, जिसको अमर और नहीं या अवामिर और नवाही कहते हैं, उसकी तादाद बहुत कम है। हैरत हो ये आपको सुनकर ये जुमला। हम तो बच्चों को सारा दिन या कहते हैं डू दिस और या कहते हैं डोंट डू दिस। कुरान हालांकि किताब हिदायत है, लेकिन डूज एंड डोंट्स बहुत कम है। आप चाहें तो अपने कुरान पाक में नोट्स में रेड कलर या कोई साइन लगा लें कि ये डोंट है। जहां तक पूरा सबक जाता जाए आगे जमा करेंगे तो आपको एंड पे पूरे पता भी लग जाएंगे कितने हैं। लेकिन ला तकूलू, पहली बात इससे लिखिए अल्लाह को हक है कि हमें किसी चीज से रोके। आज कुछ लोग कहते हैं क्यों अल्लाह हमें हुक्म देता, बल्कि अफसोस के साथ कहूं आज तो बच्चे माँ बाप को भी नहीं पसंद करते कि वो आपको मना करें। कहते हैं व्हाई यू से ऑलवेज दिस टू मी, तो ये आपके पास एक दलील है कि अल्लाह को हक हासिल है कि वो हमें किसी बात से रोके या किसी बात का हुक्म दे। वजह या अय्युहन्नास उबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। पहले ही या अय्युहन्नास में पढ़ चुके थे, वो रब है, उसने तुम्हें सब कुछ दिया है, उसकी वजह से तो तुम हो, अगर वो ना होता तो तुम ना होते, तो लिहाजा दिल खोल लें। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डोंट्स पे कान रखें तो उनको अल्लाह की हैसियत याद करवाएं। अब नोट कीजिए जुमला, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी तरबियत की टिप है। डोंट्स और डूज की बात हो रही है ना, डूज किसके मानता है इंसान? जिसे मोहब्बत करता है। यानी कोई आपको हुक्म दे तो आप कब मानते हैं? मोहब्बत में मानते हैं ना, मोहब्बत फाते है आलम, मोहब्बत दिलों को जीत लेती है। डोंट्स नवाही से कब बंदा रुकता है? जब किसी से डरता हो। आपके बच्चे आपसे जितनी मोहब्बत करेंगे ना उतनी आपकी बात मानेंगे, ओके अम्मी, ठीक है अम्मी, पानी चाहिए भी लाती हूँ। अच्छा आपको खाना बना दूँ, आपके पाँव दबा दूँ, बच्चे मानते जाएंगे। इसी तरह जितना अल्लाह की मोहब्बत हमारे और हमारे बच्चों और हमारे इर्द गिर्द वालों के दिल में होगी ना, तो हम फिर ये नहीं बोलेंगे क्यों वाय हाय। नहीं, मोहब्बत रास्तों को आसान कर देती है, सीधी सी बात है। नहीं, पत्थरों पर चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। इसके बरक्स आप बच्चे को कहते हैं आप अपने दोस्त के साथ नहीं जा सकते, ये क्या है? डोंट है, नहीं है। ये कब मानेंगे? माँ बहुत प्यार करती है, अम्मी से बहुत प्यार है तो मान जाओ, कभी भी नहीं मानेंगे। वो प्यार में या मामा को पुछ पुछ करेंगे और निकल जाएंगे, वो सिर्फ उस वक्त मानेंगे जब आपसे डरते भी होंगे। अल्लाह सुबहाना तआला की मोहब्बत अपने बच्चों को देंगे तो नमाज आसान हो जाएगी, अकीमुस्सला, आतुज़्ज़का, अच्छे अच्छे काम करने आसान हो जाएंगे। और जब ये मरहला तय हो जाए तो फिर अल्लाह का खौफ उनको जब दिलाएंगे, जहन्नुम का खौफ, अल्लाह की पकड़ का खौफ। और याद रखिए, एक जुमला लिख लें, अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह की पकड़ का खौफ। बिल्कुल ऐसे जैसे माँ अपना खौफ नहीं देती, अपनी मार का या अपनी पकड़ का खौफ दिलाती है। हमने अल्लाह ताला के साथ भी अपने बच्चों को या खुद को उस तरह से एसोसिएट नहीं किया, लेकिन बहरहाल बात वाजे हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की ज़ात और उसकी मेजेसिटी उसको सिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर मी? अपने ऊपर ले लें, बच्चों को छोड़ दें, क्योंकि जो खुद अभी बच्चे हैं वो परेशान होंगे, हम किनको कहें, तो अपने ऊपर लीजिए। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह से डरने का सबसे खूबसूरत तरीका उसके नामों पर गौर व फिक्र है। एक एक नाम पे गौर करें। आप 99 नेम्स ही ले लीजिए जो बड़े मारूफ है ना, आप सॉर्ट आउट करके देखेंगे ना, हैरत होगी आपको, हैरत होगी कि ज्यादा नाम अल्लाह की मोहब्बत दिलाने वाले हैं। अर रहमान, अर रहीम, अल वदूद, और बहुत थोड़े नाम ऐसे हैं जो अल्लाह की पकड़ का एहसास दिलाते हैं, अल मालिक, जब्बार, अल कहार। तो दोनों पे गौर व फिक्र, एक तो अल्लाह ताला की हैसियत को एहसान करता है। अगर आपने पेरेंटिंग का ये असूल याद रख लिया अपने आने वालों के लिए, क्योंकि अब हम अपना माजी तो पीछे नहीं ला सकते, रिवाइंड तो नहीं कर सकते ना, या रीराइट तो नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी को, लेकिन कुरान पढ़ने से पहले अगर बच्चों ने या आपने मैंने अल्लाह की सिफात और अल्लाह के नाम सीख लिए होते ना शऊर के साथ, तो ये कुरान का पैगाम भी आसान हो जाता। मसला कब बिगड़ता है कि जब हम अल्लाह को जाने बगैर उसकी किताब को जानने लगते हैं। कई लोग नए नए बड़े शौक से कुरान की तरफ आते हैं, हो सकता है आप में से भी कोई बिल्कुल नए लोग हों, अल्लाह ना करे कोई पलट जाए, लेकिन कई लोग पलट जाते हैं। योर गॉड इज सो डिमांडिंग, मुझे किसी नॉन मुस्लिम की बात नहीं बोलती, ये तुम मुस्लिम्स का गॉड इतना डिमांडिंग क्यों है? ये किस बात का इजहार है कि उसको अल्लाह की शान नहीं पता? तो इसके लिए तो सिर्फ सूरह फातिहा ही काफी है। ठीक है, चलिए आयत के ऊपर आगे चलते हैं। ला तकुलू, ना तुम कहो, क्या ना कहो, राई ना, लफ्ज नोट कीजिएगा, राई, राई प्लस ना, दो लफ्ज हैं, राई ना, तुम राई ना कहो, इसको ऐसे कह दें। तर्जमा इसका आप यही लिख सकते हैं कि ये ना कहो कि राई ना, अच्छा फिर क्या कहो, वह और कुलू कहो। जरा सा अपने नोट्स के ऊपर नजर जमाए, ला तकुलू क्या था, बोल दे, मैंने बहुत दफा भी लफ्ज बोला है, डोंट, नवाही, तो कुलू क्या है, अमर, शाबाश। तो एक ही आयत में आपको मुतजाद लफ्ज मिल गए, कुलू का मुतजाद ला तकुलू। बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे ना तो आप देखिएगा आपको अरबी जुबान से बड़ी मोहब्बत हो जाएगी। क्या कहो, उनजुर ना, बस लफ्ज उनजुर नहीं कह दें, उनजुर ना को, ऐसे लग रहा है कि एक लफ्ज को रिप्लेस किया जा रहा है, किसको, रायना को ना कहो, उनजुर ना कह दो। जैसे आप अपने बच्चे को किसी चीज से रोकें तो कहते हैं ये ना कहो, बल्कि इसकी जगह ये कहो, और साथ ही कह दिया वस्माऊ, और गौर से सुनो। पहली दफा ही बात गौर से सुना करो कि तुम्हें रायना या उंजुरना भी नहीं कहना पड़े। इसका तो इसके पीछे कोई वाक्य है, चले हम आयत पूरी करके फिर देखते हैं। अगर कोई रायना लफ्ज को बदलता है या अल्लाह को पुकारने में बद तहजीबी का शिकार होता है तो वो कौन है, वलिल काफिरीन, और काफिरों के लिए, लफ्ज लिखिए लिल काफिरीन, और वास्ते काफिरों के, ये कौन से काफिर हैं, अल्लाह को ना मानने वाले, एथियस्ट, नो, ये है तौहीन रिसालत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले। अभी आप वाक्य सुनेंगे तो आपको मेरे ये लफ्ज फिर आसान लगेंगे। आज कोई नबी सल्लम का कार्टून बना ले, आप उसको तौहीन रिसालत कहेंगे। आज कोई आपके ऊपर बुक लिख दे, या आपके बारे में, या आपकी शादियों, या आपकी बेबियों के बारे में कुछ कह दे, आप कह लें कि जो भी ऐसा करे, उर्दू में एक बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, शातिम रसूल। शातिम कहते हैं गाली देने वाले को, शतमा कहते हैं उसे एक ने गाली दी। तो आपने एक शख्स के नाम के साथ नाम सुना होगा शातिम रसूल, तो गाली देने वाला। तो असल में ये नबी सल्लम को उनके सामने बैठ के गाली देने वाला ये एक अंदाज था। ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कौन है? काफिरीन, वो काफिर हैं। क्या होगा ऐसे काफिरों के लिए? अजाबुन अलीम, उनके लिए अजाब है दर्दनाक, बहुत बड़ा अजाब है। अब आप एक आयत को देखें तो उसके पीछे एक वाकया है, फिर मैं आपको ये रायना के सारे मानी भी लिखाऊंगी तो आप इसको समझेंगे। यहां असल में बनी इसराइल जो मदीना में थे नबी सल्लम के दौर के, उनके अंदर जो इस्लाम दुश्मनी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी थी, उसका तस्करा, इसकी मुख्तलिफ सूरत हाल थी, मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देती हूँ। नबी सल्लम की जो दीन की महफिल थी ना, वो बड़ी ओपन थी। कह लीजिए स्कूल या मस्जिद नबी के बाहर ये नहीं लिख के लगाया हुआ था कि हनफीज ओनली या शाफीज ओनली। ये लफ्ज़ सुनकर आप समझ जाएंगे कि गैर मुस्लिम तो दूर की बात है, हमारी तो मस्जिदों के दरवाजों पे लिखा हुआ है। मैंने खुद एक मस्जिद का दरवाज़ा, उस वक्त हाथों में फ़ोन नहीं थे होते, पाकिस्तान की ये बात है, हम कहीं गुजर रहे थे तो मस्जिद थी पास, तो मस्जिद का नाम और उसके दरवाजे के नीचे लिखा हुआ था हनफी। ये बड़ा ज़रूरी है लिखना पाकिस्तान में, क्योंकि अगर कोई गैर हनफी हनफी मस्जिद में घुस गया और गैर हनफी के तरीके पे नमाज शुरू कर दी, तो कुछ लोग हनफियत किए, वो कहना चाहिए मोहब्बत में या जोश में, नमाज तोड़ के उसको मस्जिद से भी निकाल सकते हैं। ये आज हालात है हमारे, ये ऐसी कोई बात है, कोई नई बात नहीं है, ये मौजू छेड़ना नहीं चाहती वरना बात सच है। तो मस्जिदों के दरवाज़ों के बाहर तक अहले हदीस अहले सुन्नत फलां बरेलवी मसलक लिखा होता है। फिर इसी तरह मुझे याद है पाकिस्तान में एक बच्चे की किताबें मैं देख रही थी, तो इस्लामियात की बुक थी। अब अच्छा सारी दिखा रहा है, जैसे वो कहना चाहिए ज्योग्राफी है, ये साइंस की बुक है, छोटे से बच्चे की बुक्स थी। तो उसकी एक छोटी सी जो हमने भी अपने दौर में पढ़ी हुई है इस्लामियात नाम की बुक, उसके नीचे भी यही लिखा हुआ था। मैं उस दिन सोच में पड़ गई थी कि इतना सा बच्चा है, अभी तो उसको बेचारे को मुस्लिम भी लफ्ज़ नहीं आता, उसकी बुक के नीचे लिखी थी फिकह हनफी के मुताबिक। तो याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की महफिलें, हत्ता के मस्जिद नबी, मुस्लिम नॉन मुस्लिम ज्यूस थे वहाँ, मुनाफिकीन भी थे, कईयों का निफाक खुला था, सब के लिए ओपन थी, ओपन टू ऑल। और यही सुन्नत आज फिर रिवाइज होगी तो दीन फैलेगा। हमने आज दो तीन किस्म की चीज़ें पाबंदियों के तौर पर लगा दी। एक तो मैंने बात छेड़ी, उसी को ही लिख लें, फिरका वारियत के नाम पे हमने महफिलें मस्जिदें मदरसे और अपने दर्स अलग कर लिए। दूसरा सुने ही ना, पहले ही पता है मैं हनफी हूँ नहीं तो मैं सुनूँ क्यों, अच्छा मैं शाफी हूँ नहीं तो मैं सुनूँ क्यों। दूसरी हमारी बांट मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की तो ऑब्वियसली है। तीसरी एक और बांट है, इस जगह आने का एक ख़ास गेटअप है, कोई बाल कटे और बाजू खुले और चेहरे को सजाए हुए कोई औरत किसी दीन की महफिल में आ जाए सही, कुरान जैसी खूबसूरत चीज़ छोड़कर लोग उसको देखने लग जाएंगे, और अगर दर्स देने वाले की नज़र उस पर पड़ जाए तो फिर अगला सारा दर्स उन पर चलेगा। ये लोगों के कहे हुए वाक्यात हैं। अमल की बात लिखिए, अल्लाह आपको दीन के कामों की तौफीक दे। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक है आमनू माशाल्लाह अंदर ईमान घुस गया, उनके लिए तो आप एक आंख से घूरें और एक से प्यार करें, आपको पूरा हक है, अपने बच्चों को अपने शागिर्दों को जिनको आप कुछ फ़ायदा देते हैं। लेकिन नए लोग पब्लिक कॉमन लोग, आप उनके साथ हमेशा इजी गोइंग हो, आपका एटीट्यूड आपका रवैया आपकी क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ और पब्लिक दरसों में बहुत फ़र्क होना चाहिए। दीनदार होने का ये नहीं मतलब कि अगले का सांस खींच लो, लोग कहें नहीं हम इस हुलिये में आपके सामने नहीं आ सकते, नहीं तशरीफ़ लाइए, आप भी औरत है मैं भी औरत हूँ, बाहर से अगर आप आ गए हैं तो इस जगह आने के लिए दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर दुपट्टे के भी आ सकते हैं। ये जो बहुत सारी हमने बीच में दीवारें खींच दी ना, तो फिर कुछ लोग बन गए माशाल्लाह अमन हूँ और कुछ को तो हमने खुद ही कह दिया काफिर, बड़ा अच्छा लगता है ये लफ्ज़ हमें काफिर काफिर। तो बहरहाल यहाँ से आपको समझ आया, अब वो महफिलें कैसी होती थी, बहुत बड़ी होती थी। मस्जिद नबी आपको मालूम है आज वाली तो है ही नहीं, अल्लाह के नबी तो कभी तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते थे कि इस मस्जिद का साउंड सिस्टम इतना खूबसूरत होगा। कि हर पिलर के पास खड़े हो जाएं तो ऐसे लगता है दिल पे आवाज जा रही है। अब आप जब बोलते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने का अंदाज, नंबर एक आहिस्ता बोलते थे, आहिस्ता से मेरा आवाज आहिस्ता नहीं, ठहर ठहर के बोलते थे। फिर आप यानी साहबी कहते हैं कि अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज गिनना चाहता तो गिन लेता। फिर अहम बातों को 3 दफा दोहराते थे, ये भी आपकी सुन्नत थी। फिर इसी तरह से आपका जो एक्शन था, जिसको आई कांटेक्ट कह लीजिए, वो बहुत सारी चीज़ें समझा देता था। यानी जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे यकीन है बहुत सारों को मेरी बात समझ ही नहीं आती होगी, बट नबी सल्लम ही इज़ अ एलोकेंट टीचर, वेरी नाइस। इसके बावजूद हक था कि अगर एक बात तो ये थी कोई बात समझ ना आए, तो दूसरी क्या होती थी, यहां से लेके समझिए कि ये थर्ड रो तक आपकी आवाज जा रही थी, पीछे नहीं जाती थी। तो क्या होता था कि आप बोलते थे कुछ अरसे तक, ये 3-4 लोग लिख लेते थे लाइनें, फिर उसके बाद आप खामोश होते, तो उनमें से कोई एक बोलता और पीछे सुनते। और ये बात में रहा अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के, आपको पता है दुरूस में हजारों लोग होते थे। इमाम बुखारी ने एक दफा एक शहर का दौरा किया, ट्रिप लिया, उस महफिल में 1 लाख लोग थे। हैरत तो होती है आपको, मुझे भी, 1 लाख लोग आ जाते थे। हाँ, इस शहर में कोई इल्म वाला आया उससे फायदा ले लो। आज ये हो सकता है कब, जब कोई कॉन्सर्ट हो, कोई डीजे शीजे कोई हो, फिर तो 1 लाख लोग जमा हो जाएं किसी ऑडिटोरियम में, तो इट्स फाइन। इल्म वालों की क्या औकात है कि वो इतने लोगों का ख्वाब भी देख सकें, लेकिन उस दौर में चूंकि लोग इल्म दोस्त थे तो ऐसा होता था, और माइक भी नहीं थे, तो वो फिर एक बोलता फिर थोड़ा बोलता थोड़ा बोलता। तो बात करने का एक तरीका सिखाया गया था कि अगर कोई बात मैं बोल रही हूँ और आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज, पार्डन, या आप हाथ खड़ा कर सकती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तरीका क्या था कि लफ्ज़ कहते थे रायना। लफ्ज़ रायना को आप समझेंगे तो बहुत समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला आपको। रायना का जो लफ्ज़ है ना, रा आइन या से है। इसके 5 मुख्तलिफ मानी जहन में रखिएगा। नंबर एक, हिफाजत करना, निगाह रखना, रियायत करना, इधर लफ्ज़ रियायत उर्दू में बोलते हैं ना, वो यही है, ख्याल रखना और ध्यान रखना। आपने लफ्ज़ राई सुना कभी, कुल्लुकुम राईयुन, किसको कहते हैं राई, चरवाहे को कहते हैं, शेफर्ड को कहते हैं। क्या करता है चरवाहा, ये 5 चीज़ें देख लीजिए, बकरियों की हिफाजत करता है, बकरियों पे निगाह रखता है, बकरियों का ख्याल रखता है, उन पे ध्यान रखता है, उनकी रियायत करता है। खास तौर पे ये लफ्ज जानदार चीज की हिफाजत करने के लिए बोला जाता है। यानी एक होता है आप कुर्सियों की हिफाजत पर बैठ गए हैं, आप बैठे हैं इधर के कोई आके कंप्यूटर्स ना चोरी करे, उसके लिए राय नहीं होंगे आप। राय कौन है, जानदार। कैसे, 2 तरीके से, गिजा के जरिए, जैसे आप अपने बच्चों के राय हैं, हदीस है आपके लिए, कुल्लुकुम रायुन, तो मैं हर एक चरवा है, और कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, और हर एक अपनी रईयत के बारे में जवाबदेह भी है, रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों को आप खाना खिलाते हैं ना, गिजा के जरिए खिलाना पिलाना, ये भी आपकी रियायत है। दूसरी रियायत होती है दुश्मन और नुकसानदेह चीज़ों से बचाना। इसको तो आप में से जो माएँ हैं वो खुद ही देख लें, क्लास में भी हैं तो शायद बेबी सिटिंग में तवज्जो लगी हो कि बच्चे इस वक्त भी अंदर क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ती माँ इधर उधर झांक रही होती हैं, बच्चा ठीक तो खेल रहा है। अरबी जबान में कहते हैं अरा आई तहु, मैंने चारा डाला, रियुन, रा आइन या कहते हैं घास को, कुरान में भी ये आता है आगे लफ्ज, ठीक है। अब रायत का लफ्ज बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, जैसे मतलब मैं बोलते हुए तेज बोल गई तो आप में से कोई कहता है रायना, जरा हमारा भी ख्याल करें, यानी हम नया नया लिखना सीख रहे हैं। कोई बूढ़ा कह सकता है जरा आहिस्ता से, जरा मैं आहिस्ता लिखती हूँ। कोई जोड़ों के दर्द वाला कहता है जरा रायत कर दें, बड़ा खूबसूरत लफ्ज था। यहूद और मुनाफिकीन जो उस महफिल में इल्म लेने नहीं आते थे, खबरें लेने आते थे, मुखबरी करते थे, CIDs, स्पाइस, वो उस महफिल के तकद्दस को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि दिल पे कुरान जाता सीधा, तो वो चाहते थे किसी तरह डिस्टॉर्ट करें, तवज्जो बदल दें लोगों की। तो फिर वो क्या करते थे, राई लफ्ज को थोड़ा सा बदलते। अरबी जुबान में तो ये लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इब्रानी जुबान में राई एक गाली थी, 2 तरह से इसको बिगाड़ते थे। ये असल में इनके बातों के स्टाइल को, स्पीच स्टाइल जो है ना, उसके ऊपर तनकीद हो रही है, बदगोई के लिए इस्तेमाल होता था। रायना को जरा नीचे की तरफ दबा कर करते तो राईना बना देते। राईना का मानी क्या बनता? हो हमारे चरवाहे यदि नबी सल्लम को डिस्क्रेस करते, और कभी क्या पढ़ते? रायना, आइन को बहुत स्किप करते। रायना कहते हैं इब्रानी जबान में अहमक को, स्टूपिड। अब मैं तो नहीं नबी सल्लम के लिए ये तर्जमा करती, आप खुद करके सोचें जहन में कि अल्लाह के नबी को क्या कहते थे, यानी आपकी बेइज्जती करते थे। करते क्यों थे? अंदर के बुगस को तस्कीन देते थे, दिली दिल में खुशी महसूस करते, और अल्लाह के नबी को नहीं पता चलता था। आज भी आप देखिए, जब आप किसी बच्चे को डांटें और बाप के आगे गुस्से से ना बोल सके ना, तो बोलना शुरू हो जाएगा, थोड़ी सी बात ऊंची करके, फिर नीचे दिल में अच्छा आ रहा हो ना, टिक 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 पाँव उठाता हुआ आएगा। तो ये असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट करते, और फिर जब उठते यहां से तो बाहर जाके हंसते, आज उल्लू बनाया, आज बेवकूफ बनाए, कह कह लगाते और कहते लो ये मुसलमान, और देखो ये नबी कहते हैं गैब की खबरें आती हैं, ये इनको खुद नहीं पता कि हमने इनकी महफिल में बैठकर इनको क्या कह दिया। और वाकई नबी सल्लम को ना पता चलता अगर अल्लाह ताला अपने नबी को ये आयतें ना बताते थे। तो आप देखिए कि आज लोग सवाल करते हैं, अब आप भी अपने आप से पूछिए, आज कोई नबी सल्लम के कार्टून बनाए तो हमें क्या करना है? जवाब मिल गया आपको भी इसमें, सहाबा तो नहीं ये कहते थे ना। अब जरा सा फिर नजर डालें आयत पे, तो मैं आपको इसके अंदर जरा सा गौर कराऊंगी। आयत क्या पढ़े? या अय्युल्लज़ीना आमनू ला तकूलू रायना, साहबा को कहा जा रहा है कि रायना ना को, तो साहबा में से कोई मासूम सी शक्ल बना के कहता अल्लाह के नबी हमने क्या किया है, रायना में क्या बुराई है, साहबा ने तो कुछ नहीं किया, खराबी किसने की? बाहर से आने वाले बच्चों ने। और आप अपने बच्चे को डांट रहे हैं कि बेटा आप लफ्ज रायना ही छोड़ दो, होनी क्या चाहिए थी आयत? मैं आप समझाने के लिए बोल रही हूँ, जरा आयत पे नजर डालेगा, या अय्युहल यहूद ला तकूलू रायना या रायना। यहूद को रोका जाता जिन्होंने किया था। एक बड़ी अहम बात इसमें से निकलने वाली है, आप भी तवज्जो फरमाइएगा, इस्लाम का मिजाज क्या है? जब कोई बेनिफिट ऑफ डाउट ले ले, शक का फायदा उठा ले, तो तुम उस लफ्ज को ही छोड़ दो। कल परसों की बात है, ग्रुप्स में कोई ग्रुप था, तो उसमें एक सिस्टर ने एक वीडियो के बारे में अपने बड़े दिली जज्बात लोगों से शेयर किए हुए कि एक वीडियो पहले तो उसका क्लिप ही सिर्फ आया था 10 मिनट का, जो नबी सल्लम और इस्लाम के खिलाफ बनी है, अब उसका पूरा उन्होंने रिलीज कर दिया घंटे डेढ़ का, और ये वो, और अब सारे मुसलमान इसको ये कर दें वो कर दें, और प्लस यानी इस मैसेज को आम करें। आप समझ गए ना टोन से जो मैसेजों की होती है, जिस मैसेज के एंड पे ये लिखा ना कि इसको शेयर प्लीज, और तो मेरा तो वही दिल बंद होता कि मैंने इसको खोलना भी नहीं है। अच्छा खैर, उन्होंने वो जो लिखा ना एडवर्टाइजमेंट, तो वो एक किस्म का अपने दर्द का इजहार, जल्दी करें इसको बंद करें, और नीचे लिंक भी दिया हुआ। तो हमारी एडमिन जो होती है, अब बनना है रूम्स में, मैंने भी कई दफ़ा कहा, जिक्र कर दिया कि इन ग्रुप्स में ऐसे ना लिखें, लेकिन आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग बाज़ दफ़ा उसमें ग्रुप्स में मैसेज करते हैं, बुरा लगता है, लेकिन मैं नहीं फिर बोलती। तो एडमिन हमारी है ना, तो उनमें से एक ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, कहेंगी थैंक यू सिस्टर फॉर एडवर्टाइजिंग दैट मूवी। समझ आई? मुझे नहीं पता था वो कौन सी मूवी है, कब उसका 10 मिनट का बना अब हो गया, बट मेरे अंदर में क्यूरियोसिटी आएगी ना कि मैं लिंक खोलूं। और उन्होंने लिखा दैट्स द प्रॉब्लम, कि आज हम मुसलमान बातिल की इस तरह तशहीर करते हैं। अब जिस चीज को ये मैसेज आएगा ना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, और आप जानते हैं आज क्लिक्स की जुबान में, एक दफा क्लिक कर दें यूट्यूब पे आ जाना 10,000 पीपल क्लिक दैट, आप एक मिनट में हाउस बिल्ला पढ़ते हुए लाहौल पढ़ते हुए बंद कर दें, पर वहां आपका काउंटर चल गया। ये नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में एक जुमला बोलते हैं, निप द इवल इन द बड, बुराई को उसकी जड़ पे ही छोड़ दो, कभी भी तशहीर ना करें प्लीज। खुदा के लिए, आपको भी अल्लाह ने फोन दिए हैं, नेमते हैं अल्लाह की, सबसे कीमती चीज वक्त होता है। 200 मैसेज में से अगर 50 मैसेज सिर्फ खुराफात के होंगे, तो कम से कम उसको डिलीट करने या ओवरलुक करने में भी तो किसी के 5 मिनट लगेंगे। अपनी जिंदगी का असूल बनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मेरे लिए एक बेहतरीन क्राइटेरियन दे दिया है, मिन हुस्निल इस्लामी तर्कुहु मा ला यानी, किसी इंसान के इस्लाम का हुसन यह है कि बेमानी चीज़ों को छोड़ दें। ऐसी चीज़ों का एक ही इंजाम है, अगर आपको कोई दे दे डिलीट कर दें। नसीहत का मूड है तो जिसने आपको भेजा उसको नसीहत कर दें कि प्लीज़ डोंट फॉरवर्ड दिस। खैर, आपने उनकी उस लफ्ज को नहीं प्रमोट किया। अच्छा, फिर बाद वो गालियाँ भी बोल रहे होते हैं। अगर कुरान में आप नोट कीजिए कि लफ्ज़ रायना की वो फॉर्म होती जो उन्होंने बोली, तो आप देखिए वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। उन्होंने तो मदीना की एक छोटी सी मस्जिद में बैठ के वो जुमले बोले, सारी दुनिया में छपने वाले कुरान, सारी दुनिया के कारी जो पढ़ते हैं वो उनके जुमले बोलते हैं। तो नकले कुफर, कुफर नबाशत फारसी में कहते हैं, कुफर की नकल कुफर नहीं होती, लेकिन कुरान में इनडायरेक्टली उन्हीं की तशखीर होती। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या किया, तुम वो जुमला ही छोड़ दो। यहां से पता चला इस एक वाक्य से, ये जो अभी सुन रहे हैं ना, अभी सिर्फ एक आयत है, कम से कम मैं आपको 100 मॉरल्स लिखा सकती हूँ मुसलमानों की डे टू डे लाइफ के, जिसमें से चंद नोट कर लीजिए कि जब कोई दूसरा किसी चीज को मिस यूज करे तो तुम उसको ओवरलुक करो, इग्नोर ग्रेसफुली। लिख लें इस आयत का टॉपिक तो आपको बहुत अच्छा मतलब समझ आ जाएगा उसका भी। दूसरी बात, वकूल उनजुरना, लफ्ज बदल दिया, लफ्ज रायना को रिप्लेस किया। आगे भी बात आ रही है रिप्लेसमेंट की, नंसख और मनसूख में, तो यहां उसके एक बड़ी खूबसूरत पहले ही मिसाल दी। लोग कहते हैं कुरान में रब्त नहीं है, कभी कोई बात ऐसी वैसी, हालांकि यकीन करें एक वही मुफसर की बात कह, मुझे पूरा कुरान एक आयत लगता है, इतना इसमें रब्त मौजूद है। तो लिहाजा रायना को रिप्लेस कर दो उनजुरना। उनजुरना सिंपल लफ्ज है, इसके दो मानी आमतौर पर, तीन ले लीजिए। नंबर एक, राह देखना, और दूसरा नजरा से देखना, नजर, नाजरीन, नाजिरा, नाजरा। ये जो हम लफ्ज नाजरा पढ़ते हैं ये मुझे नहीं समझ आता क्या कहते हैं हम, लेकिन नाजिर देखने वाला। और तीसरे इसका मतलब होता है इंतजार करना, क्योंकि जब हम इंतजार करते हैं तो रास्ता ही देख रहे होते हैं ना। तो बस अल्लाह ताला ने सादा सा हुक्म दे दिया कि लफ्ज रायना आज के बाद ना बोलना, और तुम उसकी जगह पे उनजुरना बोल दो। मानी तकरीबन एक ही है ना, रायना में क्या था, हमारी रियायत कीजिए, उनजुरना में क्या है, हमारी तरफ देखिए, मतलब ये कि जरा हमारा भी ख्याल रख लें। यहां पता चला अमल का नुक्ता, अल्टरनेट दीजिए। जब आप अपने बच्चों को किसी लफ्ज या किसी चीज से रोकें तो फिर आप उनको अल्टरनेट जरूर दें। हम बीच में हैंग अप कर देते हैं उनको, अब ये नहीं करना, तो मामा क्या करना है, चुप, ज्यादा नहीं बोलते, ज्यादा नहीं पूछते, नहीं, लोगों को हमेशा अल्टरनेट दें। अच्छा ये नहीं करना तो फिर क्या करना है और कैसे करना है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ उनजुरना कहा। और यहूद का ये रवैया आप सूरत निसा की आयत में जाके और खोल के पढ़ेंगे, मिनल लसीना हादु युहर्रिफून अल कलीमन मवादीही व यकूलून समेना वासेना वस्मा गैर मुस्मै व रायनन लयम बि अलसिनतिहिम व तानन फिद्दीन। यहाँ पे बात पूरी होती है इनकी, जो इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों का हुसन खत्म करने के लिए बोली थी। सूरत निसा की आयत 46 है कि वो आपकी महफिलों में आकर लफ्जों को बदल कर ऐसी बातें करते और अंदर बददुआ देते थे, कहते थे वस्म गैरा मुस्मैन, तुम्हारी बात कोई ना सुनने आए, तुम्हारी शोहरत ना हो, लोग तुम्हें ना सुने। तो लिहाजा ये सारी चीजें आपको मुझे क्या बताती हैं, नंबर एक के इल्म की महफिल का अदब, ये भी अब चंद बातें लिखे। सिर्फ इस एक आयत के ऊपर उलमा ने बाब के बाब रकम कर दिए इल्म के अदब पे। मैंने इस आयत का एक और कोड वर्ड बनाया हुआ है, आपको भी लिखा देती हूँ, बाअदब बानसीब। और अगला जुमला आप खुद लिख लें, आपने बचपन से 10-20 बार सुना होगा, इल्म आ जाता है किताबें पढ़ने से, सीडी सुनने से, लेक्चर सुनने से, इंटरनेट पे इधर उधर स्क्रॉल करने से इल्म आ जाएगा। अदब के लिए आपको इल्म की महफिल में बैठना पड़ता है, जैसे आप बैठे हैं ऑन साइट ऐसे बैठ जाएं। आपको ऑनलाइन पे कोर्स मिल गया, आपके शहर आपके मुल्क में कोई सहूलत नहीं है, कोई बात नहीं, आप जहां बैठ के खुद अपना माहौल बना के बैठेंगे ना तो आप खुद इल्म सीख लेंगे। हजारों स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह ऑनलाइन पे नजरों के सामने के, जो घरों से कुरान सीख भी रहे थे और अब सिखा भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माहौल खुद बनाए। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स से मैं हैरान होती हूँ, घर में अकेले में क्लास ले रही होती हैं। मैंने अपना सारा ये अमेरिका का कह लीजिए कि जो सेटअप शुरू किया तो वो ऑनलाइन क्लासेस ही तो किया, ऑन साइट भी होती थी, लेकिन ये जो आज जितने रंग लगे ये सारी एक छोटी सी ऑनलाइन क्लास से लगी थी। वो खुद ऐसे स्टूडेंट है, कहते हैं हम सुबह शावर लेकर, कुछ एकदम वो कहती हैं हम वाइट स्कार्फ लेकर बैठते हैं, आज भी कंघी करते हैं, जो मैंने आम जहां आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देती हूँ उन तक भी जाती हैं। कई कोर्सेज ऐसे ही हुए, ऑन साइट ऑनलाइन दोनों जगह हुए। वो कहती हैं हम सारी चीज़ों का अपने ऊपर लेते हैं, और उसका फायदा क्या होता है, नींद नहीं आती, सुस्ती नहीं आती। वो अपने घर के कंप्यूटर डेस्क और चेयर पे बैठे कहते हैं हम यूं फील करते हैं कि आप हमें देख रहे हैं, हम टांग नहीं ऊपर करते, कैसे लगता है जैसे अब आप यहां नहीं कर सकते ना, डिसरिस्पेक्ट लगता है। तो वो लोग सीख लेते हैं, और जिन्होंने नहीं सीखना होगा वो सामने बैठ कर भी जहन ना रखेंगे तो नहीं सीखेंगे। तो इल्म का ताल्लुक अदब के साथ है। किस चीज का अदब, तीन चीजों का अदब। नंबर एक, इल्म का, यानी जो इल्म ले रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे तो हम सारा यकीन रखते हैं, कुरान बहुत अदब वाला कलाम है। एक इल्म देने वाले का अदब जिसको हम उस्ताद कहते हैं, और तीसरा उस जगह का ये अदब जहां बैठे हैं, ये टेबल, ये कुर्सियां, आपकी कापियां, आपके पेन, आपकी किताबें, ये सारी चीजें आपके सीखने और सिखाने के बीच में आपके अंदर आती हैं। फिर एक और चीज़ इस आयत से अपने लिए अमल का नुक्ता लिखें, तकीदे का नुक्ता बेसिकली, कि नबी सल्लम को गैब नहीं पता था। अगर अल्लाह ताला ना बताते तो आपको तो पता भी नहीं चलना था। फिर अगली बात इसमें से नुक्ता, वुस्सत कल्बी, इल्म वालों के लिए इसमें एक पैगाम है, दिल खुले रखो, तुम्हारी महफिलें खुली होनी चाहिए, गड़बड़ ना हो। अगला एक कोड वर्ड और लिख लीजिए इसमें, और वो क्या है कि गैर मुस्लिमों से डील करने का तरीका। आज हर मस्जिद, इदारे, हमारे अपने स्कूल में ऑफ कोर्स ये भी उन्हीं में से एक है, इतना एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, कोई नॉन मुस्लिम राह जाता वहां रुककर इस्लाम के बारे में अपने जहन की बातें या जो बातें वो पूछ सकते थे। अगली एक और चीज नोट कर लें, बस ये छोटे पॉइंट्स भी नोट किया करें तो आपको याद रखने आसान होंगे, और वो क्या है कि दीन वाली जगह बहुत सिंपल होनी चाहिए, संजीदगी के साथ लोग वहां इल्म लें, लेकिन मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में लफ्ज़ अवॉइड कर रही हूँ असल में, लेकिन बोलती हूँ अप्रोचेबल, अप्रोचेबल, इट शुड बी अप्रोचेबल टू एवरीवन। आप कहेंगे अच्छा फिर आप ओपन रूम में क्यों नहीं सुनाते, आप क्यों नहीं ये तफसीर इस वक्त सबको सुना रहे, बाहर चलते फिरते, तो ये डिसरिस्पेक्ट होगी। इसलिए कि हम कहते हैं कि फिर सुन लेंगे, और आप साथ फोन पे बातें कर रहे हैं और साथ आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप लेक्चर की भी तौहीन कर रहे हैं और आप सुनाने वाले की भी कर रहे हैं, ठीक है? तो लिमिटेड किया जा सकता है, वरना तो फिर दुनिया का कोई यूनिवर्सिटी चल ही नहीं सके। अगली चीज, शोखियां, दीन के नाम पर नहीं चल सकती। अब मैं एक बड़ी कड़वी बात कहने वाली हूँ, मुझे माफ करें वो सारे लोग जिनकी महफिलों में ये होती हैं, मैंने अटेंड करके देखी हैं ऐसी महफिलें। आज दीन के नाम पे हमारी आंटीज मस्जिदों में क्लासेस रखती हैं, और वो 10 साल 12 साल तक एक ही कुरान चल रहा होता है, और जिस दिन वो 30वां पारा पढ़ते हैं तो आखिरी में वो जब 20-25 या 15-20 लोग हैं ना, सबको संदे बांटते हैं। ये मैंने अपने कानों से देखा, आंखों से सुना और भुगता भी है जी। आज इनका कुरान पूरा हो गया, कुरान पूरा हो गया, माशाल्लाह। कितने साल में हुआ? 15 साल में। अच्छा आप 15 साल? नहीं, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, 2 साल हुए आते हुए। आप किधर है? अच्छा टीचर ये बताइए, वो जो 15 साल जिनसे शुरू किया था वो किधर? कहती उनमें तो आज एक भी नहीं है। अच्छा जी, तो ये जो सनद आपने अपने प्यारे हाथों से इनको दी, ये किस चीज़ की दी है? नहीं ना, खुश करना पड़ता है। मैंने खुद यकीन करें बुखारी का एक खत्म की महफिल अटेंड की, और उस दिन स्कूल या मस्जिद वाले लोगों की संदे प्रिंट कर रहे हैं, भाई ये किनको देनी है जो आ जाए हैं, इन्होंने पूरी बुखारी पढ़ ली है? नहीं, कोई कभी आता है ना, कोई रूल ना रेगुलेशन, यहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, आपकी इतनी बड़ी जुरत है, या आपका सर्टिफिकेट लेके कल अमेरिकन एम्बेसी में जाके वीजा लगवा ले के मैंने बुखारी पढ़ी है, मुझे कहीं टीचर रख लो, तो एम्बेसी रख लेगी? वो तो आपके कागजों पे आपको वीजे देते हैं, उनको क्या पता आपको आता भी है कि नहीं आता। एक ही डिग्री होती है, दो मुख्तलिफ इंसान आप देख लें, फर्क है ना? यहाँ ये उम्मत मुस्लिमा के जवाल की अलामत है। इल्म के साथ हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ख़त्म कर दिया। आप किसी ऑफिस के काउंटर पे जाएं, पहले लिखा हुआ है टेलीफोन बंद। इस्लामाबाद में आपको जाने के इत्तफाक हुआ ना, तकरीबन 4-6 मील दूर कहीं वो आप लोगों के सामान बैग सब रख लेते हैं, टेलीफोन आपके हाथ में नहीं, कुछ नहीं, ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे आप कब्र में जाने लगे हैं। वहां से फिर वो बसों में बिठा के पता नहीं इधर उधर घुमा घुमू के फिर एम्बेसी में लेके आते हैं। ये जब मैं कभी लास्ट टाइम किसी के साथ गई तो मुझे वो एक्सपीरियंस याद है। वाई क्यों? ये अमेरिकन एम्बेसी इतनी हिडन क्यों है? कहते सिक्योरिटी प्रॉब्लम, हमें करना पड़ता है वो, उनके शरायत है, आपको कोई नहीं पता कहाँ जा सकते हैं। जो एड्रेस आपको बताते हैं वहां तक आपको कोई बता सकता है, उसके बाद वो आपको आगे लेके जाएंगे, वरना नहीं जा सकते। उनके रूल्स हम मानने को तैयार है। बैंक में जाएं, सेलफोन नहीं यूज कर सकते, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिस में खड़े हैं आप, वहां ये नहीं कर सकते वो नहीं, है ना ऐसा मामला? इल्म के साथ क्या है, जो करना कर लो। बीच में बोलती भी आंटियां मैंने सुनी, उस्ताद बेचारा चुप कर जाता है और वो उस बोलने वाले बोलना शुरू होते हैं। यानी ऐसी कुरान क्लासेस के जहां बात एक करे और बाद में बहस शुरू हो जाए, मैं सोचती हूँ ये दीन का मजाक है, इससे तो बेहतर है ना हो। क्योंकि उसके बाद जो लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, हनीम हकीम खतरा है जान, और दूसरी बात ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है आज हमारी उम्मत का कि लोग महीने की हफ्ते की एक क्लास ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन रूल्स नहीं। मैं कहती एक ही क्लास ले लें आप हफ्ते में, 10 साल में आप कुरान पढ़ लें, नो प्रॉब्लम। हमारी अपनी एक क्लास पिछले मेरे ख्याल 1.5 साल 1.5 साल पहले ऑनलाइन पर ख़त्म हुई है, पिछले साल 2015 में, एवरी फ्राइडे तफसीर चलती थी। और मैं सोचती थी इन्होंने क्या पढ़ा होगा। इत्तफाक देखिए उस तफसीर में हमारे कनाडा के बहुत स्टूडेंट्स थे, यानी शुरू से पहली से लेके एक रब का पैगाम मेरे नाम कोर्स शुरू किया था तो ये उसके बाद शुरू हुई थी रब का पैगाम हम सब के नाम, वो तो 4 साल में पूरा हो गया, ये 10 साल में हुआ क्योंकि हफ्ते में एक दिन थी। तो मैं अपने दिल में उस क्लास को सोचती थी छोड़ो खेल लगा हुआ है बस अब पूरा करा दो। इत्तफाक देखिए जिन दिनों अभी ये आखिरी पारों में थी 26-27 में, तो मुझे कनाडा जाने का इत्तफाक हुआ। जहाँ मैं गई जो स्टूडेंट्स मिलने आए उसमें मेजोरिटी इसी क्लास के स्टूडेंट्स थे, और जो उनके कारनामे और 10 साल में वो घिस घिस के उनके ऊपर कुरान का रंग आया तब्दीलियाँ थी। अमल आता है कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, बट रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको भी यहाँ बहुत चीज़ें छुपती होंगी हमारी, आपको ये नहीं बताया जाता आज तफसीर कब है, शुरू में है आखिर है। भाई आप जहाज़ को बैठने का टाइम और उतरने का लेते हैं सिर्फ, कभी आपको पाकिस्तान से PIA ने यहाँ आने तक ये बताया इतने बजे आप ईरान के ऊपर से गुजरेंगे, इतने बजे आप इराक के ऊपर से, और इतने बजे सऊदी अरब, आप वहाँ से बैठे और इधर उतर जाएँ। क्या आप एक उस्ताद को या आप एक इदारे को इतना भी हक नहीं दे सकते कि वो 2-2.5-3 घंटे का टाइम टेबल आपका अपनी मर्जी से सेट करे, उनकी मर्जी है। लेकिन हमारे अंदर एक एटीट्यूड आता है, वो सोचते हैं ये डिसऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि ये तरबियत होती है। फिर इसी तरह आप देखें सेलफोन ले आए, बातें कर ले, साथ खा भी ले, साथ पी भी ले, खाते रहे। आप मुझे बताएं कि मैं बोल रही हूँ और आप खा रहे हैं पी रहे हैं, मिसाल दे रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही कि भाई किसी को चले शुगर लो हो रही है आप कैंडी मुंह में डाल लें, इट्स फाइन, बट आपके एक हाथ में बर्गर रखा हुआ और एक सेप ले रहे हैं कोक का और वो क्लासेज हैं, तरबियत नहीं होती। और बच्चों की यंगस्टर्स की क्लासेज में तो स्कूलों में देखिए पाँव टेबलों पर रख के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, यहाँ के रेगुलर स्कूलों के अंदर भी टीचर का अदब नहीं है, लोग नाम लेते हैं टीचरों के। तो बादबा नसीब इल्म का ताल्लुक किससे है, मेरा हल इमाम मालिक की बात है या मुझे अब किसी का नाम बस ऐसे ही लिख लें, एक बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि मैंने अपने उस्ताद से पहली दफ़ा में इल्म लिया था, और उसके बाद शायद इमाम मुजाहिद का मुझे याद आ रहा है 30 बार उन्होंने इब्ने अब्बास से कुरान सीखा। तो लोग उनको कहते थे बार बार जाके आप एक ही उस्ताद से क्या सीख रहे हो। तो इमाम मालिक के साथ मेरे जहन में एक कटका हुआ है, वो कहते हैं कि पहली दफ़ा इल्म लिया था, उसके बाद मैंने अदब लिया, फिर मैंने हिकमत ली। हिकमतें आती हैं, वर्किंग मेथडोलॉजी समझ आती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इंसान की अना पिसती है। घर में कौन इतनी देर सांस खींच के बैठता है, अगर आप खुद से ये रिकॉर्डिंग से सुन रहे होते हो सकते हैं अभी जाके 2 दफ़ा पानी पी आए होते, बीच में मैसेज चेक कर लेते, तो डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके इल्म के अंदर फोकस्ड रहें। मैं कहती हूँ आप कुछ भी ना और करें, अगर आप अपने सबक के दौरान फोकस्ड हैं और घर में अपना एक वक्त मुकर्रर कर लें और लिख के लगा दें डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज़, 2 घंटा 1.5 घंटा आप घर जाके पढ़ लें, सारा दिन आप कुछ और भी करें आप कुछ ज़रूर बनेंगे। उस्ताद हमेशा प्रिडिक्ट कर सकता है कि आप कल कुछ बनेंगे। वही लोग मैंने कुछ बंदे देखे हैं जो स्टूडेंट लाइफ में फोकस्ड थे, ऑपोजिट को देख लें या तो वो बंदे ही कुछ नहीं और बना दें तो वो पहले अपने लिए बिगाड़ था फिर इदारे के लिए बिगाड़ होता है। कल अपने लिए मर्जियां चलती थी अब अपने लिए, तो कमिटमेंट बड़ी खूबसूरत चीज़ है। खैर अदब के बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपको पहली बात समझ आ गई, हमने एक हिस्सा कवर कर लिया अपने आज के सबक का, और यहाँ से आगे अब हम दूसरा हिस्सा इकट्ठा पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें अब उनकी एक दूसरी चीज़ मिलेगी। और अब यहाँ से नोट कीजिए कि जब अल्लाह सुभान व तआला अच्छा चाहे तो फिर कोई बुरा नहीं कर सकता, ये भी एक साइड का पॉइंट लिखें। और ये जो बात है ना इसमें मैं नज़र नहीं डलवाई, बस माओ इसको हाईलाइट करें, सुनने से ताल्लुक है। कौन से सुनने, ये सिर्फ सुनना नहीं है, बस माओ से मिराद है सुनो और कबूल करो, असमाओ वल कबूल, जस्माए कबूल। इस वक्त आपके कान मेरी बात सुन रहे हैं, यहाँ वस्माओं से क्या मुराद है, दिल के कानों से सुनो, अंदर तक लेकर चलो, ठीक है। तो इल्म की महफिल में सुनना चाहिए, और ये सूरत आराफ में भी आयत आती है कि वस्माओ सुनो तो सही, तो सुनने से बहरहाल बहुत बड़ी बात है, जो गौर से सुनता है उससे फ़ायदा हो जाता है। फिर इसी तरह से जुमानी बातें नहीं करनी चाहिए, ये भी एक साइड का नुक्ता नोट कर लें। सवाल पैदा होता क्यों, आखिरी बात करके अगली आयत पे जाऊंगी, क्यों भाई हम इल्म की बातें गौर से सुने, तो लिखिएगा, नंबर एक बात समझ आती है। आपके तो हम तो समझदारी बड़े हैं, हमें तो पहले ही पता थी, तो फिर दूसरा हम फायदा नोट कर लें, बात दिल के अंदर उतर जाती है। गौर से सुनेंगे ना तो दिल में उतरेगी। पता थी आपको बात, लेकिन असर होगा, पेनिट्रेटिंग होती है बात। इस तरह से आपको इंशाल्लाह फायदा होगा, ईमान महफूज होता है, दिल बेहिसी से बच जाता है। एक जुमला लिख लें, कुरान सुनने के दौरान बातें करना दिलों को सख्त कर देता है। आप तिलावत सुन सकते हैं घर का काम करते हुए, लेक्चर भी सुन सकते हैं, सेम बात है। आप खाना पका रहे हैं, इस्त्री कर रहे हैं, दोनों चीज़ें आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट जहां आपको किसी से बात करनी पड़ जाए, फोन आ गया बीच में, इंस्ट्रक्शन किसी को देनी पड़ी, चंद सेकंड लिए ये पॉज का बटन इसीलिए रखा हो तो उसको दबा लें। तिलावत चलती जा रही है और आप बच्चों को डांट रहे हैं, आप मियाँ साहब को कह रहे हैं अच्छा ये कर दें, वो कर दें, ये कर दें, लेक्चर या तिलावत चल रहा है और आप बीच में बोल रहे हैं, बस आप समझ लें कि ये आपका दिल सख्त हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आता है कि वो दिल की मट्टी इतनी सख्त होती है कि सुन सुन के सुन हो जाते हैं। और हसद भी नहीं करना चाहिए, इससे ये भी एक चीज़ मिलती है।